ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये बात रविवार 31 दिसंबर 2023 के लिए है। विषय क्रिश्चियन साइंस। स्वर्णपथ, यूहन्ना। और सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उत्तरदायी अध्ययन, यशाया, यर्मिया। तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो। शांति हर एक ताई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा है वो चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रगट होगा और सब पुरानी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी उसका प्रचार करो। कहो कि जिसने इसराइल को तितर बितर किया था, वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उसे छुटकारा दिया है। इसलिए वो सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और यहोवा से अनाज और नया दाखमधु, तत का तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे अधि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए तांता बांध कर चलेंगे, और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वो फिर कभी उदास न होंगे। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाला हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वो अन्य जातियों के लिए न्याय प्रगत करेगा। यूहन्ना। और याकूब का कुआं भी वहीं था, सो यीशु मार्ग का थका हुआ कुएं पर यूं ही बैठ गया। और ये बात छठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो मुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर कभी अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सौता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्य अद्विकता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वो जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर। वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरुण अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वो स्त्री से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या किस लिए इससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर को चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं ये तो मसीह नहीं है। लूका। सब्बत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। यूहन्ना। तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। वो ये बातें कह ही रहा था कि बतेरों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे कर दूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण करेगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। गलतियों। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मानवीय विश्वासों के कमजोर पड़ाव के अलावा पांथों के ढीलेपन के ऊपर क्रिश्चियन उपचारिक मन का प्रदर्शन एक प्रकट और व्यावहारिक विज्ञान है। ये मसीह के सत्य, जीवन और प्रेम के रहस्य उद्घाटन के रूप में सभी हर समय के लिए अत्यावश्यक है, जो हर आदमी को समझे और अभ्यास करने के लिए आक्रामक रहता है। सामरी स्त्री ने कहा, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं ये तो मसीह नहीं है। मसीह सत्य को शरीर पर आत्मा की शक्ति को साबित करने के लिए यीशु के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था, ये दिखाने के लिए कि सत्य मानव मन और शरीर पर अपने प्रभाव, बीमारी को ठीक करने और पाप को नष्ट करने से प्रकट होता है। यीशु ने मसीह ईश्वर के सच्चे विचार का प्रतिनिधित्व किया। पौलुस ने कहा, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जल्दी या बाद में हमें पता चलेगा कि मनुष्य की परिमित क्षमता के भरून को इस भरम से मजबूर किया जाता है कि वो आत्मा की बजाय आत्मा के स्थान पर शरीर में रहे। पदार्थ के दावों से इनकार आत्मा की खुशियों की ओर मानव स्वतंत्रता और शरीर पर अंतिम विजय की ओर एक बड़ा कदम है। ना तो उम्र और ना दुर्घटना आत्मा की इंद्रियों में हस्तक्षेप कर सकती है, और कोई अन्य वास्तविक इंद्रियां नहीं है। आत्मा की इंद्रियां दर्द राहित हैं और वो हमेशा शांति में रहती हैं। उनसे सभी चीज़ों के सम्मान जैसे असत्य की शक्ति और सत्यात्व को कोई छिपा नहीं सकता। सभी क्षेत्रों और नस्लों के पुरुष और महिलाएं अभी भी भौतिक अर्थों के बंधन में हैं। अज्ञानी अपनी स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें? जब हमारी भूमि में अफ्रीकी दास्ता को समाप्त कर दिया गया, तब एक वर्ग में मानव जीवन के सबसे निचले स्तर पर मनुष्य के अधिकारों की पुष्टि की गई। ये केवल विश्वव्यापी दास्ता के उन्मूलन की दिशा में आगे के कदमों की भविष्यवाणी थी, जो अस्तित्व के उच्च स्तर पर और अधिक सूक्ष्म और भ्रष्ट रूपों में पाई जाती थी। अफ्रीकी दास की ओर से ईश्वर की आवाज अभी भी हमारी भूमि में गूंज रही थी, जब इस अनय धर्म युद्ध के हेरल्ड की आवाज ने सार्वभौमिक स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई, जो मनुष्य के अधिकारों को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करने की मांग कर रहा था। पाप, बीमारी और मृत्यु के भ्रूण मानव मन से त्रस्त हो जाते हैं, और इसकी स्वतंत्रता को मानवीय युद्ध के माध्यम से नहीं, संगीन और तर्क से नहीं, बल्कि मसीह के दिव्य विज्ञान के माध्यम से जीता जाना चाहिए। भगवान ने मानव अधिकारों का एक उच्च मंच बनाया है और उन्हें इसे दिव्य दावों पर बनाया है। इन दावों को कोड या पंथ के माध्यम से नहीं किया जाता, लेकिन पृथ्वी पर शांति, पुरुषों के प्रति सद्भाव के प्रदर्शन में मानव सिद्धांत, विद्वतापूर्ण धर्मशास्त्र, भावतिक चिकित्सा और स्वच्छता, विश्वास और आध्यात्मिक समझ की बेड़ियां लगा देते हैं। दिव्य विज्ञान इन बेड़ियों को तोड़ता है और मनुष्य का अपने निर्माता के प्रति एकमात्र निष्ठा की या जन्म आसिद अधिकार खुद पर जोड़ देता है। मैंने अपने सामने ऐसे बीमारों को देखा जो एक अवास्तविक गुरु की वर्षों तक दास्ता करते हुए इस विश्वास के साथ जी रहे थे कि मन की बजाय शरीर उन पर शासन करता है। लंगड़े, बहरे, गूंगे, बीमार, कामुक, पापी में उन्हें अपने विश्वासों की गुलामी से और फराउन के शिक्षक प्रणालियों से बचाना चाहता था, जो आज भी पहले की तरह इसराइल के लोग दास्तव में हैं। मैंने अपने सामने भयानक संघर्ष, लाल समंदर और जंगल देखा, लेकिन मैंने ईश्वर में विश्वास के माध्यम से मजबूत मुक्तिदाता सत्य पर भरोसा करते हुए क्रिश्चियन विज्ञान की भूमि में मार्गदर्शन करने के लिए दबाव डाला, जहां बेड़ियां टूटती हैं और मनुष्य के अधिकारों को पूरी तरह से जाना और स्वीकार किया जाता है। मैंने देखा कि नश्वर विश्वास के कानून में सभी त्रुटियां शामिल थीं, और यहां तक कि दामनकारी कानून पर विवाद किया जाता है और नश्वर रोगों को उनकी स्वतंत्रता का अधिकार सिखाया जाता है। इसलिए गुलामी बनाने वाली इंद्रियों के दावों को अस्वीकार किया जाना चाहिए और उनका स्थान लिया जाना चाहिए। दिव्य मन के कानून को मानव बंधन को समाप्त करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य इंसान के अविभाज्य अधिकारों से अनाभिगे और निराशाजनक दास्ता के अधीन रहेगा, क्योंकि कुछ सार्वजनिक शिक्षक दिव्य शक्ति की अज्ञानता की अनुमति देते हैं, एक अज्ञान जो निरंतर बंधन और मानवीय पीड़ा की नींव है। मनुष्य के अधिकारों को त्याग कर हम सभी के उत्पीड़न के विनाश को दूर करने में विफल नहीं हो सकते। गुलामी मनुष्य की वेद स्थिति नहीं है, ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र किया। पौलुस ने कहा, मैं आजाद पैदा हुआ था। सभी पुरुषों को स्वतंत्र होना चाहिए। जहां कहीं प्रभु की आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। क्रिश्चियन साइंस स्वतंत्रता और रोने के मानक को बढ़ाती है। मेरे पीछे आओ, पाप, मृत्यु और बीमारी के बंधन से बचो। यीशु ने रास्ता चिन्हित किया। दुनिया के नागरियों, परमेश्वर के बच्चों की शानदार स्वतंत्रता स्वीकार करो और मुक्त रहो। ये आपका दिव्य अधिकार है। भावतिक बोध का भ्रम ईश्वरीय विधान नहीं। ये आपको बड़ा करता है, आपके मुक्त अंगों को उलझाता है, आपकी क्षमताओं को उपंग करता है, आपके शरीर को ऊर्जावान करता है और आपकी होने की तख्ती को खराब कर देता है। यदि परमेश्वर ने मनुष्य पर शासन करने के लिए भावतिक नियमों की स्थापना की होती जिसकी अवज्ञा करने से मनुष्य बीमार हो जाता, तो यीशु ने उन नियमों की उहेलना नहीं की होती जो उनके सीधे विरोध में और सभी भावतिक परिस्थितियों की उहेलना करते हुए चंगाई करते हैं। क्रिश्चियन विज्ञान ईश्वर को पाप, बीमारी और मृत्यु के लेखक के रूप में नहीं बल्कि ईश्वरीय सिद्धांत के रूप में प्रकट करता है, सर्वोच्च व्यक्ति मन सभी बुराई से मुक्त। क्योंकि सभी सत्य दिव्य मन से आगे बढ़ते हैं, इसलिए कोई भावतिक विज्ञान नहीं है, इसलिए सत्य मानव नहीं है और ये सामग्री का नियम नहीं है, क्योंकि सामग्री कानून का दाता नहीं है। विज्ञान दिव्य मन का एक प्रतीक है और केवल भगवान की व्याख्या करने में सक्षम है। इसकी एक आध्यात्मिक उत्पत्ति है और एक सामग्री नहीं है, ये एक दिव्य उच्चारण है, दिलासा देने वाला जो सभी सत्य का निरंतरित्व करता है। संत यूहन्ना के शब्दों में, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इस सहायक को मैं क्रिश्चियन साइंस समझता हूँ। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।